एक बहुत सुंदर सर्वे आया था कुछ दिनों पहले, मैंने उसे पढ़ा, आप सबने भी शायद पढ़ा होगा, कि यदि आप 3 मिनट खुलकर ताली बजाते हैं तो आपके तन के सारे रोग दूर भाग जाते हैं। इसलिए आज आप खुल के ताली बजाएं, क्योंकि हम अपने परिवार में बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम किस्त में ये 3 मिनट पूरा करेंगे, इसीलिए आप जब भी बजाएं दिल खोल के बजाएं, इसमें कोई कंजूसी नहीं। हमारा परिवार है और हमारे परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं, आज अपने सुंदर विचार हम सबके सम्मुख रख रहे हैं, तो दिल से हम अपनी भावनाओं को अवश्य प्रेषित करें। क्योंकि शुरुआत में नहीं, मैंने एक बात कही थी कि स्पार्क का भाव ही है कि आप बहुत अंदर उतरते हैं। स्पार्क आपको एकाग्र करता है, स्पार्क आपको अंतर्मुखी करता है, स्पार्क आपको गहराई में उतरने में मदद करता है, सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। और ये तभी हो सकता है जब आप बाहरी दुनिया से अपने आप को समेट लें, अपने भीतर आएं। स्पार्क मीटिंग में इस वर्ष हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी बातें होंगी। हर बार स्पार्क मीटिंग में नई चीजें होती हैं, गहन चीजें होती हैं, हमारे पुरुषार्थ के लिए भी, सेवाओं के लिए भी। तो इस बार अगले 3 दिन 4 दिन तक हम क्या करने जा रहे हैं, किन बातों पर हमारा फोकस रहेगा, क्या क्या आप यहां से लेकर के जाने वाले हैं, उन सब के बारे में विस्तार से स्पार्क मीटिंग की ब्रीफिंग के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीकांत भाई जी को, जो कि हमारे स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही भारतवर्ष में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी अनेक सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस या जो बीकेएस की गैदरिंग होती है, उन सबको आप बहुत ही सिद्ध हस्त हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करने में। बहुत कुशलता पूर्वक आप उन सब का संचालन करते हैं। आपके नेतृत्व में 200 किताबें प्रकाशित हुई हैं जो स्पार्क विंग में आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही DRDO, निम्हांस, एम्स, इन सबके साथ जो राजयोग एप्लीकेशन, क्या है राजयोग और किस प्रकार से हमारे जीवन में कारगर हो सकता है, उन सबके साथ भी आप बहुत ही कुशलतापूर्वक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हम लोग भविष्य में श्री बनेंगे, लेकिन श्रीकांत भाई अभी से ही श्री बन गए हैं। तो ऐसे श्री को मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूं इस बार की ब्रीफिंग के।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित स्पार्क विंग के चेयरपर्सन बीके अंबिका दीदी जी, महाराष्ट्र जोन की कोऑर्डिनेटर बीके अलका दीदी, विनय पांड्या भाई स्पार्क की कोरूप मेंबर, रूपेश भाई और सभी स्पार्कलर भाई बहने, शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा जो पहली बार आज इस कल्प में पहली बार स्पार्क मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हाथ उठाए। बहन जी आप देखिए। और मुझे एक बात अच्छा लगता है, रमेश भाई एक बार कहा करते थे ईच वन टीच वन, और उसमें एक भाई सफल किए मुझे फोन करके, हमारे साहूकार भाई नासिक के, खड़े होंगे थोड़ा एक मिनट के लिए साहूकार भाई नासिक, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब ने कहा था ईच वन टीच वन, हम इस बार पूरा करेंगे, और उन्होंने पूरा किया है, इसलिए हम सबकी तरफ से आपको विशेष धन्यवाद। जैसे रूपेश भाई कह रहे थे कि हम पूरे वर्ष के लिए ये 4 दिन की मीटिंग रखते हैं, और स्पार्क की जो भी हम गतिविधि करेंगे, चाहे पुरुषार्थ की प्लानिंग हो, सोउन्नति की, या तो प्रोग्राम्स जो कॉन्फ्रेंस करेंगे, या स्पार्क की उन्नति के लिए और कई डेवलपमेंट कार्यक्रम है, वो सब की प्लानिंग हम इस समय करते हैं। और रमेश भाई हमेशा कहा करते थे हर एक स्पार्कलर जो है वो एक एक आर्मी की तरह है, कमांडर नहीं, कमांडर कमांड करने वाले होते हैं लेकिन आर्मी खुद मेहनत करते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे इस बार जो प्रोजेक्ट की बातचीत हो या जो आपके सामने प्रेजेंटेशन हो, अब सब मिलकर के, हम सभी मिलकर के स्पार्क की सेवाएं अब तक जो हुई है, 2000 अभी जो 23 स्पार्क मीटिंग है और 2018 में हम इसको लगभग 2 गुना करेंगे, आप इसमें सहमत है मेरे साथ, अब तक जो हुआ है 2 गुना, मतलब 23 वर्ष के 2 गुना करें कितने टाइम्स हो जाता है, 36 टाइम्स, 46 बार हो जाता है, तो इसलिए आप सोचिए इसके बारे में, हाथ उठाने से पहले सोचिए। 2 बराबर 2 टाइम्स ज्यादा करना है हमें इस बार, क्योंकि बाबा ने इस वर्ष को समाप्ति वर्ष घोषित किया है, और जो बाबा ने कहा और मुरली चली और हमारी मीटिंग शुरू हो रही है, आप सोचिए इस बात को, हम कितने भाग्यवान हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, हम सारे सेशंस आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। मैं जस्ट एजेंडा रीड आउट करूंगा, आप लोग पास एजेंडा है, क्योंकि बार बार पूछते हैं अभी क्या होगा, इसलिए एक बार पढ़ना चाहेंगे हम। ठीक है, अच्छा अगर नहीं मिला है, जैसे प्रोग्राम पूरा होगा काउंटर से ले लीजिएगा, सुन लीजिए आप एक बार। ठीक है, अभी हम लोग जो सुनने वाले हैं, मेरे ब्रीफिंग के बाद हम अंबिका दीदी को सुनेंगे, उनकी तरफ से इंस्पिरेशन हम सबके प्रति और स्पार्क के प्रति। उसके बाद हम निरुल भाई जी आएंगे और संतोष दीदी आएंगे, उनके हम सुनेंगे इनॉग्रल एड्रेस, और अलका दीदी से सुनेंगे। हमने खास अलका दीदी को कहा है कि उषाबेन की जो इच्छा थी, उम्मीद, रमेश भाई ने जो उनके साथ बात किया है वो आज हमारे सम्मुख रखेंगे। और आज इनॉग्रल सेशन के बाद 4 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। हम चाहेंगे हमारे स्पार्कलर का एक अच्छा गुडविल रहा है अब तक कि समय से पहले पहुंचते हैं, इस बार वही होगा। सभी राजी हैं? एकदम 4 बजे या हॉल पैक होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम देखते हैं कि जगह नहीं मिलता है, तो अपने जगह खुद ऑक्यूपाई कर लीजिए, हमें मत पूछिए कि हमको जगह नहीं मिला, हम नहीं दे पाएंगे, अपनी जगह खुद रखिएगा। तो 4 से 4:30 आज हम एक शुरुआत करेंगे योग के प्रयोग से, वो नासिक लोकल चैप्टर की तरफ से जो प्रयोग हुए हैं वो आपके सामने आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देंगे। हम चाहेंगे उसको आप अटेंड करिए, आप अपने अपने सेवा केंद्र पर भी जैसे आपको कराए जा रहे हैं आप उसी को भी प्रयोग अपने सेंटर पर कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे की प्रेजेंटेशन रहेगा डॉक्टर हरदीप भाई, उनके खासियत है वो मुरली किताब पढ़ के उसके रिसर्च पेपर बनाए हैं, तो आज आप लोग सीखेंगे कि अव्यक्त मुरली पर भी कैसे हम रिसर्च पेपर बना सकते हैं और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। और राजीव भाई खास करके आपको कुछ प्रैक्टिस करा के लाए हैं, और अशरीरपन के अभ्यास हम कैसे करें सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आपको सिखाएंगे।
जैसे इस बार का थीम है स्मृति स्वरूप भव, तो चलें अब आधे मिनट के लिए परम धाम की स्थिति में पूरी तरह डिटैच होकर स्थित होंगे। मेरा अनादि स्वरूप परम धाम, बीज रूप बाबा के साथ बिल्कुल बीज रूप स्थिति। हम बीच बीच में स्मृति स्वरूप होने की ड्रिल भी करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी रिसर्च को बल देने वाला है, बाबा की टचिंग को स्पष्ट रूप से कैच करने में मदद करता है। स्पार्क प्रतिवर्ष अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेकर के कार्य करता है अपनी उन्नति के लिए, और साथ ही योग के सुंदर प्रयोग से जुड़े हुए सेवा के भी अलग अलग प्रोजेक्ट। अब तक 125 बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट किए जा चुके हैं, जिन्हें आप स्पार्क में देख सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, जो हमारे नए भाई बहने यहाँ पे आए हुए हैं। आप जानते हैं मम्मा हमेशा ही ज्ञान को बहुत ही सुंदर सरल ढंग से प्रस्तुत किया करती थी। ये स्पार्क के प्रोजेक्ट भी ऐसे ही होते हैं कि ज्ञान की बातों को बहुत ही गहराई से, सरलता से, महीनता से आप तक पहुंचाते हैं, जिन्हें आप समझकर अपने जीवन में ला सकते हैं। पिछले वर्ष ऐसे ही सुंदर प्रोजेक्ट लिए गए थे, उन प्रोजेक्ट्स का क्या रिजल्ट रहा उसके लिए अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स को। 2 सुंदर प्रोजेक्ट पिछले वर्ष थे, दुआएं दो और दुआएं लो, और साथ ही मन जीत तो जगत जीत। तो पहले मैं दुआएं दो दुआएं लो प्रोजेक्ट के लिए संजय भाई जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि स्पार्क के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत ही ज्ञानी और योगी भाई हैं, और ज्ञान योग की महीनता में जाने में जिनकी बहुत ही गहरी रुचि है। तो हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय संजय भाई जी का, अपने प्रोजेक्ट का रिपोर्ट हम सबके सम्मुख रखेंगे।
ओम शांति। पिछली बार जो 3 प्रोजेक्ट लिए गए थे उसमें से एक था दुआएं दो दुआएं लो, और इस प्रोजेक्ट को पूरे वर्ष चलाया गया है, ये पूरा दिसंबर मास तक चला है। इसके लिए जो पुरुषार्थ का प्लान बनाया गया था वो 15-15 दिनों का प्लान बनाया गया था। शुरू में 10 दिन के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों की ये डिमांड आई कि 15 दिन कम पड़ रहे हैं, जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं उसका आनंद आने लगता है तो फिर दूसरा आ जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर 15 दिन में एक प्लान दिया जाने लगा। शुरू में इसका रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आया, करीब 70-80 लोग या 100 लोग ही जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा लोगों की रुचि भी बढ़ी और करीब 200 से भी ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। इसमें खास ये ध्यान रखा गया था कि सोल कॉन्शियसनेस पर ज्यादा ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ छोटी छोटी ऐसी धारणाएं हम सब अपने जीवन में इनकलकेट करें जिनके आधार से हमारे व्यवहार में प्रैक्टिकल परिवर्तन आए और हम दुआओं के पात्र बन सके। छोटी छोटी चीजों में बोल के द्वारा, छोटे छोटे कर्म के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा कुछ हम ऐसा करें जिससे हमें लोगों से दुआएं प्राप्त हो और हम भी अपनी मानसिकता में कुछ ऐसा परिवर्तन लाएं जिससे हम लोगों को दुआएं सहज रूप से, नेचुरल रूप से दे पाएं। तो इस तरह से ये पूरे वर्ष तक ये प्रोजेक्ट चलाया गया और इसमें 4 बातों पर मुख्य ध्यान रखा गया कि हर 15 दिन में उन्हें एक योग का अभ्यास दिया गया, एक विजन दिया गया जिसके आधार पर योग किया जाए, एक धारणा की बात रखी गई, उस पर 15 दिनों तक कोई न कोई एक धारणा को लेकर के हमको चलना है, फिर एक चिंतन के लिए विषय दिया गया और सकास, हर 15 दिन के लिए सकास की एक थीम दी गई और देखा गया कि इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे कभी ब्राह्मण परिवार को सकास देना है, कई बार लौकिक परिवार को, एक बार 15 दिनों के लिए दिया गया कि हमें अपने लौकिक परिवार के लोगों को सकास देनी है, बाबा से शक्तियां लेनी है और उन्हें देनी है और उनके लिए अच्छे विचार करने हैं। और बाद में देखा गया कि इसके बाद कई लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मेल्स आए, बहुत अच्छे अनुभव आए कि उनके परिवारों में बहुत समस्याएं थी, आपस में बहुत अनबन थी और इस अभ्यास के बाद उनके रिलेशंस में काफी परिवर्तन आए, काफी एक सकारात्मक चेंज देखने को मिला। तो इस तरह से ये एक पूरे वर्ष चलने वाला प्रोजेक्ट था। बाद में जब लास्ट में जो लास्ट का पुरुषार्थ प्लान हमने भेजा तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के मेल्स ये आए कि भाई जी इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करिएगा, नेक्स्ट ईयर भी इसको आप कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा लग रहा है तो इसे अगले वर्ष भी आप कंटिन्यू करें, लेकिन हर वर्ष जैसे कि नए नए प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं तो इस वर्ष के लिए भी 2 नए प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। तो इस तरह से ये छोटी सी रिपोर्टिंग थी इसकी। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जी आपका, आपने बहुत सारी दुआएं जमा की इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और सचमुच दुआओं से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती वैसे भी कहा जाता है, इसीलिए जहां से भी हमें दुआएं प्राप्त हो सके वो कार्य हम जरूर करें। और बाबा ने तो हमें यही सिखाया है, सबको सुख दो और सबसे सुख प्राप्त करो, ऐसे कर्म करो जिससे दुआएं प्राप्त हो, तो हमारे जीवन में तो ये शामिल है ही और भी हम इसे अंडरलाइन करेंगे। अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट मनजीत तो जगतजीत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विपिन भाई नायक, प्रियंका बहन और समीना बहन को कि वो इस प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है वो आप सबके सम्मुख रखें। पहले विपिन भाई नायक।
ओम शांति। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि न तो मैं मेडिकल डॉक्टर हूं और न ही मैं पीएचडी डॉक्टर हूं। ये कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है कि मेरे मित्र जो हैं डॉक्टर कॉन्ट्रैक्टर, उनका नाम भी विपिन भाई है, इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे आदरणीय महानुभाव और ऑडियंस के रूप में बैठे हुए मेरे सभी स्पार्कलर्स प्यारे भाई बहन, मैं जो कहना चाहता हूं मैं लिखे ही आया हूं ताकि समय भी बचे और कोई पॉइंट छूट भी ना जाए। बाबा कहते जो व्यर्थ और नेगेटिव विचारों से मुक्त हैं वे ही मनजित बन सकते हैं। तो गत वर्ष हम मनजित सो जगतजित नामक रिसर्च प्रोजेक्ट से जुटे थे। मेन फोकस रहा दो बातों पर, कैसे हम पॉजिटिव विचारों में रमण करते रहें और दूसरा कैसे हम सदा पॉजिटिव इमोशन या फीलिंग में, किसी न किसी पॉजिटिव इमोशन या फीलिंग में स्थित रहें। देखा यह गया है कि सफल व्यक्ति अपने इमोशन के शहंशाह होते हैं। कौन सी इमोशन को कब कितनी उछलने देना उसके हाथों में होता है, उसके बस में होता है। प्रोजेक्ट का नाम आपने सुन लिया, मनजित सो जगतजित। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे हमारे आदरणीय रूपेश भाई जी और प्रोजेक्ट गाइड रहे हमारे आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी। इन दोनों के मार्गदर्शन में हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत सुचारू रूप से सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे ये सभी लोकल चैप्टर्स, अहमदाबाद, पलवल, इंदौर, लखनऊ और जलगांव। सुचारू रूप से ये प्रोजेक्ट को चलाया गया था। हर महीने के लिए एक थीम लिया जाता था, फॉर एग्जाम्पल मन मेरा मित, उसमें ज्यादा करके सेल्फ टॉक करनी होती थी। मन सुमन बने, मन के मालिक बने इत्यादि। इस तरह हर महीने भिन्न भिन्न थीम लेकर उस पर पुरुषार्थ किया जाता था। उसके अनुरूप वीकली ज्वेल्स या एफर्ट ऑफ द वीक हर सप्ताह के लिए भेजे जाते थे। हर दिन के सोमान, आज की प्रेरणा, मनजित सो जगतजित बनने के लिए आज का योगाभ्यास बिल्कुल रेगुलर रूप से भेजा जाया करता था, जिस पर हम पुरुषार्थ करते रहे थे और अपने स्वउन्नति के साथ योग के प्रयोग भी करते रहे थे। उक्त बातों पर आधारित रेगुलर रूप से चार्ट भी भरते थे और इस सब के फलस्वरूप मनसा में काफी बदलाव आया। हमें लगता है कि हम काफी रूप से अपने विचारों और भावों को साहजिक रूप से मैनेज कर पा रहे हैं। इसके स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के आधार पर हमारी बीके प्रियंका बेन प्रयोग के रिजल्ट जो सफलता मिली है वो सुनाएंगी, पर उसके पहले जो हमने प्रयोग किए उसको केवल मेंशन करता हूं। हमारे बीच नलिनी बेन हैं, शायद अपनी जगह पे खड़ी हो। उनको पाइलोरिक स्टेनोसिस हुआ था, खड़ी होइए। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? स्टमक और इंटेस्टाइन को जोड़ने वाला जो द्वार होता है पाइलोरा, वो क्लोज हो गया था और कई कोशिश करने पर, और इसका एक ही इलाज होता है था सर्जरी, परंतु हमने पानी को चार्ज करके वो पीना शुरू किया और उसके आधार से वो पाइलोरिक द्वार तो खुला और खुला ही अभी रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है। दूसरा, एक कुमारी गिर गई थी, ट्वेल्थ साइंस में थी, गिर गई थी, स्पाइन में डैमेज हुआ, क्रश हो गया एक स्पाइनल मन का, और सर्जरी की गई। उसका लोअर लिम टोटली पैरालाइज हो गया था, 2 महीने बेड रिडन थी। उसको भी ये इस तरह का पानी पिलाने पर 1 महीने में उठ खड़ी हो गई और धीरे धीरे करके चलने लगी। अभी वो फ्रीली चलती है। ओम शांति।
ओम शांति। हम स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मनजीत जगतजीत के बारे में तो हमने एनालिसिस किया है कि हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। वैसे तो हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, इम्प्रूवमेंट तो होता ही है सभी में, राइट। लेकिन कहीं कहीं स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस से पता भी चलता है कि कहाँ हम वीक हो रहे हैं, मतलब कहाँ हम लैक कर रहे हैं। लेकिन सब ओवरऑल तो हम इम्प्रूव ही कर रहे हैं, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस से हमको कहीं कहीं वो पॉइंट पकड़ में आ जाती है कि हम यहाँ पे लैक कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस से हमको कई बातें पता भी चली है। प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि हमने कितना इम्प्रूव भी कितना इम्प्रूव किया है, कहाँ लैग हो रहे हैं। तो हमने क्वेश्चनर बनाए थे पहले, तो भाई जी ने बनाए थे, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ध्यान में रख के अलग अलग पॉइंट्स है कि कंट्रोलिंग पावर कैसे बड़ी है, रूलिंग पावर, वेस्ट थॉट्स, वो सब अलग अलग पॉइंट्स लेके क्वेश्चनर बनाया था। उसमें पहले हमने प्री डेटा कलेक्ट किया था, जो हमने प्रोजेक्ट्स के पहले जो हमारी स्थिति थी वो चेक किया था, फिर बाद में हमने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करने के बाद फिर डेटा लिया गया था, उसको पोस्ट डेटा बोलते हैं। फिर दोनों को कंपैरिजन करके देखा कि हमारे में इम्प्रूवमेंट हुई कि नहीं, तो जो भी अभी प्रेजेंटेशन देखेंगे उससे पता चलेगा कि हमारे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये जो भी डेटा बताएंगे वो सभी आपका ही है, राइट, है कि नहीं, है ना? तो ये सब आपके ही डेटा लिया गया ही, आपके ही जो भी यहाँ पे बताएंगे वो आपका ही किया गया परिणाम दिखाए जाएगा। तो आप सब रेडी है देखने के लिए कि कितने तक हमने इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं? रेडी हो? ठीक है, तो अभी समीना दीदी बताएंगे कि हमारा प्रेजेंटेशन थ्रू की कैसे प्रेजेंटेशन हमने स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस किया है।
ओम शांति। जैसे भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया तो उससे काफी हद तक ये क्लियर है कि प्रोजेक्ट कितना सफल रहा, कितना सबकी स्थिति में सबकी स्थिति आगे बढ़ी, मनसा कैसे पावरफुल हुई। लेकिन उसको स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चनर बनाया गया और उसको एनालिसिस का दो पार्ट्स किए गए, प्री एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस। प्री में प्रोजेक्ट शुरू होने के समय उसका डेटा कलेक्ट किया गया, माना उस समय स्थिति क्या थी हमारी, और पोस्ट एनालिसिस जो पार्ट था जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ उस समय स्थिति क्या थी। और क्वेश्चनर बनाने का आधार जो दिया गया, प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे उसके आधार पर क्वेश्चंस तैयार किए गए क्वेश्चनर के, उसको मैं ब्रीफ करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर कि किन पॉइंट्स को लेकर हमने एनालिसिस किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कि माइंड पावरफुल बने, मन सशक्त बने। उसके लिए चेक किया गया कि हमारा माइंड कितना सेंसिटिव है, सेंसिटिव माना कितना नाजुक है, कितनी जल्दी हमें दूसरों की बात बुरी लग जाती है। तो ये पाया गया उसमें कि 80 जब प्रोजेक्ट प्री एनालिसिस का डाटा जब लिया गया तो 83% हमारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारा माइंड सेंसिटिव है, माना बहुत जल्दी नाजुकपन जिसको कहेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट के अंत तक ये डाटा हमें मिला कि पहले 83% और अंत में वो डाटा 66% रह गया, माना 17% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारी सेंसिटिविटी कम हुई। ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है 9 महीना चला, 9 महीना में इतना परिवर्तन अपने आप में बहुत अच्छा है। उसके बाद दूसरा जो लिया गया, वीकनेस ऑफ माइंड। अभी हमें किसी ने कुछ कहा तो जब भी वो पल वो लम्हे याद आते हैं तो क्या वो मेरे लिए पेनफुल है? तो उसमें पाया गया कि 83% भाई बहने ऐसे थे जिन्होंने कहा हाँ जब हमको वो बातें याद आती हैं तो बहुत दुखता है, बहुत दर्द होता है। और एनालिस्ट जब तक प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो ये रिजल्ट आया कि अभी सिर्फ 14% भाई बहने ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अभी हमको तकलीफ होती है वो याद करने में, माना 69% भाई बहनों ने यहाँ इम्प्रूवमेंट की। इस प्रोजेक्ट का एक और मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम व्यर्थ पर और नेगेटिव पर विजय पाएं। तो उसमें पाया गया, पहले में एक ऑप्शन था उसमें कि कहाँ तक हमने व्यर्थ पर विजय पा ली, तो उसमें 5% भाई बहने ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह व्यर्थ पर विजय पा लिया है। आई नो थोड़ा सा नंबर है लेकिन लक्ष्य भी बहुत बड़ा था ना कि व्यर्थ पर पूरी तरह विजय पाना। और प्रोजेक्ट शुरू होने के समय पे 48% भाई बहनों ने कहा काफी हद तक विजय पा ली है। प्रोजेक्ट के बाद ये नंबर कहाँ पहुँच गया होगा, 48 से कहाँ पहुँच गया होगा, एनी गेस? हाँ, ऑलमोस्ट इट वॉज 86%। माना 38% भाई बहने ऐसे थे जिन्होंने कहा हमने व्यर्थ और नेगेटिव पर काफी हद तक विजय पा ली है। फिर उसके बाद एक इस क्वेश्चनियर का एक पार्ट था स्टेबिलिटी ऑफ माइंड चेक करना कि हमारा माइंड कितना स्टेबल हुआ। तो ये पाया, इसमें आपको लग रहा होगा कि पहले ज्यादा स्टेबल था अभी कम स्टेबल हो गया, नहीं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया था। उसका रिजल्ट ये रहा कि 20% भाई बहनों ने कहा कि हमारा माइंड कम स्टेबल है, प्रोजेक्ट से पहले और प्रोजेक्ट के बाद वो नंबर कम होकर 11% रह गया। मानो 9% भाई बहने ऐसे थे जिन्होंने ये स्वीकार किया कि अभी हमारा माइंड ज्यादा स्टेबल हो गया है। अभी जो मैं कहने जा रही हूँ वो सबसे वंडरफुल रिजल्ट है। ये था रूलिंग पावर के लिए, प्रोजेक्ट का एक लक्ष्य था कि हमारी रूलिंग पावर बढ़े जब तक हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी वो स्थिर रहे। तो इसको हमने एक सिचुएशन दी थी क्वेश्चनियर में, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो प्रोजेक्ट से पहले 51% भाई बहनों ने कहा कि हमारी रूलिंग पावर अच्छी है, और प्रोजेक्ट खत्म होते होते ये संख्या कहाँ पहुंच गई होगी, ये नंबर 91%। तो ऑलमोस्ट 40% भाई बहनों ने कहा कि हमारी रूलिंग पावर ये प्रोजेक्ट करने से बढ़ गई है। सो ये एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हमारी प्रियंका बहन रूपेश भाई जी ने बहुत मेहनत की इसमें, तो मैं ये आप सबके सामने प्रेजेंट कर पाई। इसका लक्ष्य यही था बताने का कि जब हम एक डिजाइंड वे में पुरुषार्थ करते हैं तो उसके कैसे सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले तो बाबा का, सूरज भाई साहब का, रूपेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनकी गाइडलाइंस में, उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन में हम ये सब कर पाए। थैंक यू सो मच।
मैंने शुरुआत में एक बात कही थी आप लोगों से। कौन सी? आदरणीय संजय भाई जी का, विपिन भाई जी का, समीना बहन जी और साथ ही साथ हमारी प्रियंका बहन का, जिन्होंने बहुत ही प्यार से ये सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम सबके सम्मुख रखा। और सचमुच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम एक लक्ष्य को लेकर के कार्य करते हैं तो उस पर बहुत कमिटमेंट हो, और ये दोनों ही प्रोजेक्ट ऐसे रहे जिन्होंने बहुत ही कमिटमेंट के साथ ये कार्य किया और रिजल्ट आप सबके सम्मुख हैं। मैं जानना चाहूंगा कि दुआएं दो दुआएं लो प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल थे, जरा एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे प्लीज, अपने स्थान पर खड़े होंगे जो दुआएं दो दुआएं लो प्रोजेक्ट में पिछले साल शामिल थे। बहुत सुंदर, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों के प्रोग्रेस के लिए। अब दूसरा प्रोजेक्ट जो रहा है मनजीत सोजगत जीत, उसमें जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था वो अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएंगे। सबको दर्शन दें अपना, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। ये इन सबकी मेहनत है जो अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इन सब ने लगातार प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और फल भी इन्होंने प्राप्त किया। तो एक बार पुनः हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब प्रेरणा प्रदान करते हैं हमारे नए प्रतिभागियों को कि वो भी ऐसे सुंदर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब प्यारी दादी जी हम सबके बीच भले ही नहीं आ पाई हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दादी हमेशा ही उस स्थान पे रहती हैं जहाँ पे ब्राह्मण कुलभूषण होते हैं, सेवा की और स्व उन्नति की बात होती है। तो यद्यपि साकार रूप में वो यहाँ नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, दिल की दुआएं हम सब के लिए प्रेषित की हैं। दादी जी का स्मरण आते ही हम सब की बाँछें खिल जाती हैं, हम प्रसन्न होते हैं और हमें लगता है कि हमारी 102 साल की युवा दादी हमेशा ही ऐसी युवा बनी रहें और हम सबको प्रेरित करती रहें, आगे बढ़ाती रहें। तो अब दादी जी ने हम सबके लिए जो शुभकामनाएं प्रेषित की हैं बहुत दिल से, प्यार से, उसे हम बहुत दिल और भावना से स्वीकार करेंगे, आत्मसात करेंगे। प्यारी दादी जी,
ओम शांति, ओम शांति। मेरी अंबिका बहन है, मेरे साथ बैठी है, बता रही है, तो करते करके आप सबका आपस में संगठन है, वंडरफुल बात है। और मैं यहाँ हाजिर नहीं हूँ, बाबा शिवा के लिए हर साथ कर मुझे लेके जा रही है मैसूर में, और बेंगलोर और मैसूर एक दो के नजदीक है। अंबिका बहन बेंगलोर की है। मैं जब पुराने जमाने में जब पुणे में रहती थी तो बेंगलोर में जाती थी और मैसूर में जाती थी, बहुत वारी, बहुत साल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन सच्ची दिल पर साहेब राजी, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, अंदर नियत साफ है ना, तो जो संक्रम करते हैं सहज सफल हो जाता है। ये बाबा अनुभव करा रहा है, क्योंकि निश्चय में विजय समय पर ही है, निश्चिंत रहना निश्चय बन गई है, क्योंकि कभी भी कोई बात के अपने बोझा न रखे, ये करना है ये करना है ये करना, अरे कराने वाला करा रहा है, करने वाले भी कोई निमित्त भाग्यवान सेवा में संगठन में आकर के अपनी अच्छी तरह से यादगार छोड़ते हैं, क्योंकि जितनी जितनी हम जो सेवा सामने आती है उसमें सफलता होने से खुशी खोराक, खुशी जैसी खोराक है, चिंता तो जैसे बीमार बना दे, चिंता कभी भी न करना, इस बार चमकता हुआ सितारा बनना, जैसे हमारे ज्ञान सूर्य बाबा ज्ञान चंद्रमा मम्मा पद्म मम्मा चंद्रमा ज्ञान सूर्य बाबा पंतु एक बाबा भी सूर्य भी है चंद्रमा भी है, हम उनके बच्चे डकी स्टार्स है, एक एक स्टार चमकता हुआ है, तो स्टार कहाँ होता है इन दोनों आंखों में। एक बारी मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा आपके एक आंख में ब्रह्मा बाबा दूसरी आंख में शिव बाबा, तो बाबा ने मुस्कुरा के कहा दोनों इसमें बैठे है, हाजिर रहते है सदाई, शरीर उस दिन से लेकर के मुझे जैसे बाबा ने ऐसा दृष्टि दी, तो दृष्टि में सदाई शिव बाबा चाहे ब्रह्मा बाबा दोनों हमारे सामने हाजिर है, हम उनके आगे हाजिर है, ये तो वंडर हो गया है। बाबा कहे जी हजूर, हम कहे हाँ जी बाबा, हम भी जी हजूर, जी जी करने से कैसे होगा, ये कभी संक्रम नहीं आया है, क्या होगा, अच्छा निश्चय में विजय, जो शब्द है ना निश्चय खुद में भी है तो खुदा में भी है, हमारे बाप में भी निश्चय, और ड्रामा में जो बना हुआ है हर आत्मा का पाठ अपना अपना है, ताकि 84 जन्म जो हम लोगों ने परमात्मा बाप के साथ अभी अभी जो कल पहले लिया था वस्त्र में मुक्ति और जीवन मुक्ति गति सदगति दाता मेरा बाबा, तो अभी हम भी क्या करते हैं, बाबा से ये जो दिया है हमारी लाइफ में क्या है, मुक्ति सब बातों से जो नकाम की बात है ना ऑटोमेटिक हमारे आगे होती भी नहीं न होने देते हैं, बाकी सदगति के लिए यानी जीवन में ऐसा मुक्ति तो है, लेकिन जीवन ऐसी हो जो हम अपने लिए भी, जैसे कमाई करने का टाइम है तो ये टाइम है सच्चाई में मजबूत बनना, ये टाइम है सच्चाई बड़ा मजबूत बनाती है, अडोल और अचल, अडोल है कभी डोलेमान नहीं होते, कभी चलेमान नहीं होते, कुछ चला जाता डोलेमान, कुछ नहीं मिल महसूस होता तो चला मान या मेरा ये सब जो संस्कार है ये पुरानी दुनिया वालों के हैं। हम तो नई दुनिया में जाने वाले, पहले मुक्ति में जाएंगे और जल्दी जीवन मुक्ति में आएंगे। सत्युग में कोई मेहनत नहीं, कुछ साथ नहीं, सच्चाई सोने चंद मैल बारी कैसे होंगे वो तो देखेंगे। हमारा वहाँ हमको कोई प्रकार का सत्युग में कुछ भी क्या करना है, कुछ नहीं रह जाइए ना। और अब राजयोग है, योग लगा रहे हैं, योग का बल, योग से जो कर्म होता है उसका फल बड़ा अच्छा मिलता है। थैंक यू, ओम शांति। मेरा ओम शांति में मतलब ये है, मैं कहूँ मैं आत्मा हूँ, दूसरा ओम शांति परमात्मा मेरा बाप है, तीसरा ड्रामा मंदिर फूल रहा है। तो ड्रामा में जो बाबा करावन हार करा रहा है वो सदा साथी है, नॉलेज ऐसी दी है जो साथी हो करके सारा लाइफ। अभी 80 ईयर्स हो गया जब से बाबा ने यज्ञ रचा है, तब से यज्ञ में बाबा के साथ इसी नाम से मेरा नाम भी चेंज नहीं किया, जानकी जैसे दे दी। आत्मा को परमात्मा ने कौन सी चाबी दी है, चाबी वेरी वंडरफुल है। कोई भी बाहर में कार खड़ी करते हैं, इस स्कूटर का इसकी ओपनिंग करो, फिर ओपनिंग तो की, फिर की चलाने के लिए हमको सुंदर रखनी पड़ती है अपने पास, वो दे देते थे, ठीक है ना। कभी भी किसी को भी ज्ञान देना हो थोड़ा अच्छा, बाबा का नॉलेज सुन करके बाबा समय बनना हो तो हम आपको की देंगे और यहाँ टीका लगा देंगे। ये टीका चमक रहा स्टार का वंडरफुल। थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी अंबिका बहन मेरे साथ बैठी है, बता रही है, तो कर फिर करके आप सबका आपस में संगठन है, वंडरफुल बात है। और मैं यहाँ हाजिर नहीं हूँ बाबा शिवा के लिए, हंसास का मुझे लेके जा रही है मैसूर में, और बेंगलोर और मैसूर एक दो के नजदीक है। अंबिका बहन बेंगलोर की है, मैं जब मेरी
ओम शांति। जोरदार एक बार दादी जी के लिए करतल ध्वनि। दादी जैसे कह रही थी जान की, सचमुच दादी जी हम सब की जान की हैं, है ना। उनको देख करके ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, मन उत्साहित होता है, प्रसन्न होता है, और ऐसा लगता है कि दादी जी इस उम्र में सारे विश्व की परिक्रमा कर रही हैं। तो हम सबको भी दादी से प्रेरणा लेकर के दिन दुनी राज चौगनी स्वउन्नति भी और बाबा की सेवा भी, राइट। तो एक बार एक हाथ की ताली से दादी को जहां पे भी हैं हम ये आश्वासन दें कि दादी हम भी ये की जो आपने दी है उसे संभाल कर रखेंगे और अपने जीवन में अमल में भी अवश्य उसे लाएंगे। दादी जी हम सब के लिए सचमुच ऐसी चाबी दे भी रही हैं और साथ ही अपने जीवन के माध्यम से हम सबको ऐसा बनने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं।